नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी का आज 60वां जन्मदिन है। इस मौके पर गौतम अडानी परिवार की ओर से 60,000 करोड़ रुपए दान में देने का निर्णय लिया गया। अडानी परिवार की ओर से दान की गई राशि का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में किया जाएगा। गौतम अडानी ने कहा कि इस साल मेरे पिताजी शांतिलाल अडानी की 100वीं जयंती होने के साथ इस साल मेरा 60वां जन्मदिन भी है। देश भर में हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए योगदान करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। दान के लिए दी गई राशि उनकी संपत्ति का महज 9% है। बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति 7.16 लाख करोड़ रुपए है। इससे पहले भी गौतम अडानी का नाम देश के सबसे बड़े दानदाताओं में गिना जाता रहा है। पिछले साल में देश में सबसे अधिक दान करने वालों की सूची में 8वें नंबर पर थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि कारों के मूल्यांकन का नया कार्यक्रम भारत NCAP एक ऐसी व्यवस्था देता है जिसके तहत भारत में वाहनों को दुर्घटना परीक्षण में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। गडकरी ने इस बारे में कई ट्वीट किए जिनमें कहा कि भारत नया कार मूल्यांकन कार्यक्रम देश में सुरक्षित वाहनों के विनिर्माण के लिए मूल उपकरण निर्माताओं के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्राहकों को स्टार रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कारों को चुनने का विकल्प देगा और उपभोक्ता केंद्रित मंच के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा, मैंने भारत NCAP शुरू करने के लिए GSR अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है जिसके तहत भारत में वाहनों को दुर्घटना परीक्षण में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने जोर देकर कहा कि क्रैश परीक्षणों के आधार पर भारतीय कारों की स्टार रेटिंग कारों में संरचनात्मक और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय वाहनों की निर्यात योग्यता को बढ़ाने के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा ने शुक्रवार को कहा कि रुपये में तेज उतार चढ़ाव नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के समय में अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपए की विनिमय दर में गिरावट सबसे कम रही। वैश्विक स्तर पर संकट का प्रभाव और भारतीय अर्थव्यवस्था विषय पर आयोजित संवाद सत्र में पात्रा ने कहा कि भारत के पास करीब 600 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है जो काफी अधिक है। यही वजह है कि रुपए की विनिमय दर में बहुत अधिक गिरावट नहीं आई। उद्योग मंडल PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के कार्यक्रम में RBI के डिप्टी गवर्नर ने कहा, हम रुपए की स्थिरता के लिए प्रयास करेंगे और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। हम अव्यवस्थित तरीके से उतार चढ़ाव नहीं होने देंगे, निश्चित ही बहुत तेजी से उतार चढ़ाव नहीं होने देंगे। पात्रा ने कहा कि यदि रुपए की विनिमय दर में कमी को देखेंगे तो पाएंगे कि ये उन मुद्राओं में शामिल है जिनमें दुनिया में मूल्य ह्रास सबसे कम हुआ है। इसका कारण इसके पीछे 600 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार की ताकत है। बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर 78.32 पर बंद हुआ था। हालांकि शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में ये डॉलर के मुकाबले 12 पैसे चढ़कर 78.20 पर खुला। विमानन कंपनी जेट एयरवेज ने शुक्रवार को परिचालन नियुक्तियां शुरू की और अपने कैबिन क्रू के पूर्व सदस्यों को एयरलाइन में लौटने को कहा। विमानन क्षेत्र के नियामक नागर विमानन महानिदेशालय ने 20 मई को एयरलाइन को वाणिज्यिक हवाई परिचालन बहाल करने की इजाज़त दी थी। एयरलाइन के CEO संजीव कपूर ने ट्वीट किया, हमारी परिचालन नियुक्तियां शुरू हो गई हैं, जिसमें हमने जेट के पूर्व कर्मियों को वापस बुलाया है। आने वाले दिनों में पायलट और इंजीनियरों की नियुक्तियां शुरू करेंगे। एयरलाइन का वाणिज्यिक हवाई परिचालन जुलाई सितंबर तिमाही में शुरू हो सकता है। फिलहाल एयरलाइन ने केवल महिला क्रू सदस्यों को ही वापस बुलाया है। सरकार ने तेल एवं गैस नियामक PNGRB के 1.5 साल से खाली पड़े चेयरमैन पद पर नियुक्ति के लिए फिर से विज्ञापन निकाला है। तेल मंत्रालय ने इस हफ्ते पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के चेयरमैन पद के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं। PNGRB के प्रमुख का पद दिसंबर 2020 में दिनेश के सराफ के कार्यमुक्त होने के बाद से ही खाली पड़ा हुआ है। हालांकि तलाश एवं चयन समिति ने जून 2021 में पूर्व ऊर्जा सचिव संजीव नंदन सहाय का इस पद पर चयन किया था, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर मुहर नहीं लगाई गई। इसके बाद नवंबर 2021 में भी इस पद की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। ओयू ने शुक्रवार को घोषणा की कि छोटे व्यवसायों से संबंधित लोगों को उससे जुड़े होटलों में रुकने पर एक सीमित समय के लिए शुल्क में 60% की छूट मिलेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि ये सुविधा छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों के लिए है। इसकी घोषणा विश्व MSME दिवस के अवसर पर की गई। इसमें कहा गया कि इस श्रेणी के व्यवसाय से जुड़े लोगों को 27 जून से 3 जुलाई 2022 तक ओयो होटलों में रुकने पर 60% की छूट मिलेगी। ये छूट देश भर में ओयो की करीब 2000 संपत्तियों में 10,000 से अधिक कमरों पर दी जा रही है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।